नमस्कार। और गणपति के इस शुभ अवसर पर 2023 गणेश महोत्सव पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है नीरव हिंगू और आज हम बात करेंगे गणपति उत्सव में किस प्रकार से मनोकामना पूर्ति की जा सकती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गणपति उत्सव भाद्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी को शुरू होता है पूरे भारतवर्ष में, और 10 दिन का यह उत्सव बड़े ही आनंद के साथ मनाया जाता है भारत के सभी प्रांतों में। विशेष रूप से महाराष्ट्र में इसकी विशेष चर्चा होती है, पर ये सार्वजनिक महोत्सव इतनी तीव्र गति पर रहता है कि चाहे शैव हो, चाहे वो शाक्त हो, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, वह इस गणेश उत्सव में अवश्य ही भाग लेता है। तो आज मैं बात करूंगा आपको गणपति के दो ऐसे स्तोत्र के बारे में जिसके कारण आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। यह मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ और ये अनुभवजन्य बात कह रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने खुद स्वयं अनुभव किया है उस स्तोत्र के द्वारा। इसीलिए लंबी चौड़ी साधना विधान ना करके मैं केवल आपको ये बताऊंगा कि कौन से उस स्तोत्र का उच्चारण कैसे करना चाहिए या किस प्रकार से करना चाहिए जिससे कि मनोकामना पूर्ति हो जाती है। तो पहले अगर मैं बात करता हूँ तो वो आती है गणपति अथर्व शिष्य की। गणपति अथर्व शिष्य गणपति जी का उपनिषद भी माना जाता है, इसलिए उसे गणपति उपनिषद भी कहते हैं। और उसमें बहुत ही लंबा चौड़ा विधान होने के कारण कई बार लोग उसको कर नहीं पाते, पर यदि सच्ची कहूँ तो वो बहुत ही पावरफुल स्तोत्र है जिससे आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति कर सकते हो जो आपको बिल्कुल असंभव सी लगती हो। चाहे जॉब नहीं मिलता हो, चाहे विवाह में बाधाएं आ रही हो, रिलेशनशिप में इश्यू हो, चाहे प्रमोशन नहीं हो रहा हो, चाहे आपका व्यापार में नुकसान हो रहा हो, चाहे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे विघ्न बाधाएं आ रही हो, चाहे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी ना मिली हो विदेश यात्रा के लिए, किसी भी प्रकार की जो इच्छा है उसकी पूर्ति करने में भगवान गणपति पूर्ण सहायक देवता माने गए हैं। और इसीलिए यहाँ बॉम्बे में श्री सिद्धिविनायक मंदिर देवस्थान है जहाँ भगवान गजानन की पूजा करने से पूर्व एक अद्भुत स्तोत्र है जिसको कहते हैं गणपति अथर्व शिष्य, जिसको मैंने कहा गणपति उपनिषद भी कहते हैं। उस पर उनकी रोज उच्चारण किया जाता है उस स्तोत्र का। तो आज मैं गणपति पूजन से भी अधिक मैं गणपति अथर्व शिष्य के बारे में बताऊंगा कि कैसे उसका पाठ किया जाता है। बड़ा सिंपल है, आपको चाहिए यदि आपके घर पे गणपति आ रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है, उसको स्थापित कर गई, उनके सामने आसन बिछाए, लाल आसन जिस पर आपको बैठना है, उत्तरामुख आप होना है यानी कि उत्तर की तरफ आपका मुख होना चाहिए या पूर्व की ओर मुख होना चाहिए, और उसके पश्चात सामने घी का दिया जला दे, पांच उपचार से भगवान गणेश की पूजा करें जैसे गंध अक्षत पुष्प धूप दीप और नैवेद्य। गंधे यानी जो कुमकुम रोली चंदन जो हम गंध चढ़ाते हैं पानी के साथ में करके पेस्ट बनाकर, तो गणपति का गणेश गायत्री मंत्र है या फिर गणेश का जो एक अद्वितीय मंत्र है ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र के साथ भी आप गंध चढ़ा सकते हो, अक्षत यानी कि चावल चढ़ा सकते हो। अक्षत के रूप में बोलूँगा कि आपको बासमती चावल लेने हैं क्योंकि वो पूरा अखा चावल आता है, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि चावल को अक्षत कहते हैं, अक्षत ये जो टूटा हुआ ना हो तो वैसा चावल भी अर्पित कीजिए। फिर फूल उनके लिए जो कनेर का फूल आता है जासमंद क्या उसको बोलते हैं, या जासमंद बोलते हैं मैं भूल गया, कनेर या जासमंद जैसा जो उसका आता है फूल भगवान गणपति को लाल रंग का चढ़ाया जाता है वो, फिर दुर्वा चढ़ाई इसी मंत्र बोलते हुए, फिर आपको धूप दिखाना है, अगरबत्ती की बात नहीं कर रहा हूँ, धूप ना चाहे लोबान का हो चाहे किसी भी मटीरियल का हो, धूप प्रज्वलित करें, उसके बाद दीपक दर्शनार्थी के लिए दीप जलाएं, उसकी आरती करें इसी मंत्र की ओम गंग गणपते नमः ये मंत्र बोलते हुए, और अंतिम में नैवेद्य समर्पित करें। इस प्रकार करने के बाद आपको चाहिए कि आप दाहिने हाथ में जल लेकर आपको केवल ये संकल्प लेना है कि मैं अमुक गोत्र अमुक नाम का पिता या का पुत्र या अमुक की पत्नी अगर आप विवाहित स्त्री है तो गणपति अथर्व शिष्य का 11 बार पाठ कर रही हूँ, या 11 बार कीजिए या 21 बार या 51 या 108 पाठ 10 दिन तक, चतुर्थी से शुरुआत करते हुए गणपति के चतुर्दशी तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तक आपको 10 दिन मिनिमम 11 पाठ करने हैं। और ऐसा बोलकर ऐसा संकल्प लेकर आपको पानी को जमीन पर छोड़ देना है। तो इस प्रकार से आपको संकल्प लेना है और उसके बाद गुरु मंत्र की एक पहले गणपति मंत्र की एक माला फिर ओम गम गणपते नमः, एक माला में 108 दाने होते हैं तो 108 बार मंत्र का उच्चारण करना है। उसके बाद शिव मंत्र, यदि आपने आपके कोई कुल गुरु हो, आध्यात्मिक गुरु हो, उन्होंने कोई मंत्र दिया हो तो उस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए 108 बार यानी एक माला। उसके पश्चात आपको चाहिए कि गणेश गुरु गायत्री मंत्र की गणेश गायत्री मंत्र की आपको एक माला करें, जो मंत्र है ओम एक रंताय विद्महे वृक्त तुंडाय धीमहि तन्नो दंती व्रचोदया, इस मंत्र के एक माला करें और उसके पश्चात 11 पाठ मिनिमम 10 दिन तक आपको करना है। और ध्यान ये रखना है कि आपको एक ही स्थान, एक ही आसन और एक ही समय पर आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज पूर्व दिशा की ओर बैठ गए, कभी दूसरे रूम में बैठ गए, कभी बेडरूम पर बैठ गए, कभी सोफे पर बैठ गए, एक ही स्थान, स्थान परिवर्तन इसमें नहीं करना है और समय भी आपको बिल्कुल एक ही रखना है। तो इस प्रकार से जब आप करते हो तो आपको 11 दिन तक 10 दिन तक करने के बाद अंतिम दिन वापस हाथ में जल लेकर संकल्प लेना है कि मैं अमुक नाम का व्यक्ति, अमुक पिता का पुत्र, जो संकल्प किया था 10 दिन का 11 पाठ का, आज संपन्न हो चुका है। जो 11 पाठ संपन्न हो चुके हैं वो पूरे होने पर अब ये संकल्प छोड़ रहा हूँ, ऐसा करके पानी नीचे छोड़ दीजिए। या आप किसी भी गणपति पूजन में ये क्रम बड़ा सिंपल है, क्रम रख सकते हैं। और अब मैं दूसरे स्तोत्र की बात करूँगा, लक्ष्मी गणेश स्तोत्र। ये भी बहुत ही पावरफुल स्तोत्र है, इसको भी आपको अब चाहे तो 11 पाठ, 21 पाठ, 51 पाठ या 108 पाठ 10 दिन तक कर सकते हो। जिसको विशेष रूप से लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ही करना हो, लक्ष्मी प्राप्ति और विघ्न बाधाओं को नाश करने के लिए लक्ष्मी गणेश स्तोत्र का उच्चारण करना चाहिए 11 पाठ 10 दिन मिनिमम, या फिर 108 पाठ कर सके तो और भी अच्छा है। तो इस प्रकार से जब आप करते हो तो आपकी गणपति अथर्वशीर्ष उससे मनोकामना पूर्ति भी हो सकती है, और या फिर गणेश लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें तो विघ्न बाधाओं का नाश और लक्ष्मी प्राप्ति के भी आपके अवसर बढ़ जाते हैं और 101% लक्ष्मी प्राप्ति होने लगती है। अभी मैं साधकों के और भक्तों के लिए इसका उच्चारण कर रहा हूँ, गणपति अथर्वशीर्ष और उसके बाद लक्ष्मी गणेश स्तोत्र का। अब मैं पहले गणपति अथर्वशीर्ष ओम भद्रम कणवे सोनयाम देवा भद्रम पत्से भाक्षर भिय चत्राह स्टीरे रंगे सुस्तुस्तवाह संस्तन तनु भिव्यसीम देव हितम यदायुः ओम पतित इंदो व्रत सवाह त्वतित पूषा विश्ववेदाः त्वतित नक्षाक्षरयो अरिष्टनेमिः त्वतित ओब्रह त्वति ददातु ओम शांति है शांति शांति ओम नमस्ते गणपते तमय प्रत्यक्षम तत्वमसि तमय केवलम कर्तासि तमय केवलम धर्तासि तमय केवलम हर्तासि तमय केवलम हर्तासि तमय केवलम त्वमेव सर्वखल्गुदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मसि नित्यं वृतं वञ्चम सत्यं वञ्चम अद्वमाम वृत्तारम श्रोतारम अवधातारम अवधातारम अवानुचानमस्ते सम पक्षातात् अवपुष्टातात् अवधारतात् अव दक्षिणातात् अवचोद्वातात् अवधारतात् सर्वतमां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाणमय त्वं चिन्मय त्वं आनन्दमय त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दात् विद्योऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं दानमो विज्ञानमोऽसि सर्वजगदिदं तत्त्वो जायन्ते सर्वजगदिदं तव तिष्ठन्ति सर्वजगदिदं त्वयिमेष्टि सर्वजगदिदं त्वयि प्रत्यक्षे त्वं भूमिरापो नीलो भगनमः तव चत्वारि वाक्परायणे त्वं गुणतात्रः त्वं अवतारात्रः त्वं देहतात्रः त्वं कालत्रात्रः त्वं मूलाधारस्तिष्ठोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रात्रवा त्वं योगेन ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्म त्वं विष्णुत्तं रुद्रस्तम् इन्द्रस्तम् अग्ने त्वं वायुत्तं सूर्यस्तं चन्द्रमा त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरं गणादिपूर्वमुच्चाय मरणादिं तदनन्तरं मनुस्वरः परतरः आदिलधुनस्थितं तारिणरुतम् इत्यतमः मनुस्वरूपं ककारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यं रूपम् अनुस्वरः च अनुस्वरः परतरः आदिलधुनस्थितं तारिणरुतम् इत्यतमः मनुस्वरूपं ककारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यं रूपम् अनुस्वरः च नदुर्भं विनुदुर्भं नान्दः सनादं सहिता सन्धिः शेष गणसविद्या गणकर्षि निश्चन्द गायत्री चन्द्र गणपति देवता ओं गं गणपते नमः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्त दुर्गाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ओम एकदन्तं चतुरदन्तं पातम् अंकुधारिणं मृदं च वर्धं हस्ते विभानं मुष्कजोजं रक्तं लम्बोदरं मुसुरपकारकं रक्तवासनं रक्तगन्धानुयुक्तांगं रक्तपुष्पेष्वु भुजनभक्तानुकम्पनं देवं जगत्कारणमो जगत्कारणमूर्तम् आविर्भूतं च स्वस्थजाडु प्रकृतेः पुरस्तात् परम् एवं जायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनवरः नमो व्रातपते नमो गणपते नमः व्रतं पते नमस्ते अष्टोलमडराय कदन्ताय विद्यनाशिनि शिवतटाय शिवत्रिमूर्ते नमो नमः फलश्रुति। एतदथर्वशिष्य युधिते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वविधेन बाधते स सर्व सुखमीदते स पंचमहापापान् प्रमुच्यते सायं ध्यानो दिवसकृतं पापं न सन्ति प्रातः ध्यानो रात्रिकृतं पापं न सन्ति सायं प्रातः प्रविज्ञानो अपापो भवति तन्मात्रकामं मोक्षं च विदन्ति इदम् अथर्वशिष्यं शिष्यायनति यं यो यदि महाद दासयन्ति पाप स पाप्यान् भवति सहस्रावर्तनात् यं यं काममदिते तं तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमं विशिष्यति स वाग्मि भवति चतुर्धर्या मनसा न जपति स विद्यमान भवति इदम् अथर्ववाक्यं अथर्ववाक्यं ब्रह्मधारण्यं ब्रह्माद्याचरणं विद्या विद्या न विभेति न कदाचिनति यदुर्वा कुरञ्जति स वैष्णवति लागिरिजति स यतवान् विनिष्ठमेकावान् भवति यो मुदा सष्टेन जटिति यस्तवान् चिद्बल्वाप्नोति यः सजसमभिरिजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते अष्टं ब्रह्माणा सम्यक् ग्राहित्वा सूर्यवर्चस्वि भवति सूर्यग्रहे महात्यं प्रतिमा सन्निधवा चत्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविद्यान् प्रमोचन महादुष्टान्त प्रमोचन महापापात् प्रमोचने महाप्रत्यवार्यान् प्रमोचते स सर्व स सर्ववित्त भवति स सर्ववित्त भवति य एवं वेद इत्युपनिषद ॐ भद्रं करमि हे श्रोणीयां देवा भद्रं पश्ये वाक्षद्भिश्चत्राः स्थिरङ्गे स्थित्वाः सन्तं तनुभिव्यसेम देवैतं यदायुः पतिताैन्दोमृतस्वाः स्वदिता विश्ववेदाः स्वदि नक्षाचौर्य हरितनिमे स्वतिदो बृहस्पति ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः इति गणपति अथर्वशिष्य समाप्तम्। इस प्रकार से मैंने गणपति अथर्वशिष्य का उच्चारण किया और इस प्रकार आपको ये एक पाठ संपन्न हुआ। मुझे आदत है इसलिए मैं एक ही स्वर में निरंतर पाठ कर पा रहा हूँ। आपको तकलीफ हो सकती है तो इसलिए 11 पाठ मिनिमम आप कर सकते हो या पाँच पाँच वो भी ना कर सके तो। और इसके बाद मैं अब दूसरा स्त्रोत्र का उच्चारण करूँगा, वो है गणेश लक्ष्मी स्त्रोत्र। उससे पहले मैं बता दूँ मैंने इसमें फलश्रुति बीच में उच्चारण किया था कि जो स्टार्टिंग के जो श्लोक हैं गणेश अथर्वशिष्य के उसमें जो दो भागों में हर श्लोक या हर स्त्रोत्र रहता है 90% उसमें जो उसका पूरा वर्णन होता है देवता का, उसकी कृपा का, उसका महत्व का, और अंतिम छेद में परिच्छेद में उसकी फलश्रुति होती है। तो कुछ विद्वान मानते हैं कि फलश्रुति छोड़कर भी आप स्तोत्र का पाठ करते हो तो भी उसका उतना ही फल मिलेगा, पर मेरा मानना है कि फलश्रुति आपको पूरी करनी चाहिए तो वो ज़्यादा अच्छी रहती है, चाहे वो गणपति अथर्वशिष्य हो या कोई भी स्तोत्र हो। अभी मैं गणपति लक्ष्मी गणेश स्तोत्र का उच्चारण करके दिखाता हूँ। ये काफ़ी छोटा स्तोत्र है। ओम नमो विघ्नराजाय सर्वसंकब्रदायिने दुष्टारेश विनाशाय पराय परमात्मने लंबोदर महावीर नागाय अग्नोभेतम अर्धचंद्रन धरम देह विद्युह विनाशनम ओम राम रीम रोम रैम रोम हेरंबाय नमो नम सर्वसिद्धि प्रदोषित्व सिद्धि बुद्धि प्रदोभवम चितितास्त व्रतत्व रीम सतरम मोरक प्रेम सिंधु दारुण वस्ते तज उजुवरदायक इनम गणपति स्त्रोत्रम यावतेर भक्तिमान नर तस्त देहम च देहम च स्वयं लक्ष्मी निर्मोच्यते। बस छोटा सा ये मंत्र है गणेश लक्ष्मी स्त्रोत्र और इसके महत्व इतने अधिक है ये अंतिम फलश्रुति में बताया गया है। इदम गणपति स्त्रोत्र, इस गणपति स्त्रोत्र को यह पठेद भक्ति मानव, इसका पाठ करने से जो भक्ति पूर्वक नर इसको पाठ करता है, नर तस्त देहम च उस नर के अंदर में उसके देह के अंदर में एहम च स्वयं लक्ष्मी, स्वयं लक्ष्मी विराजमान होती है और जीवन के अंत समय तक उसका साथ नहीं छोड़ती, तो ये इसकी महत्व रहती है। और गणेश लक्ष्मी स्त्रोत्र का भी यदि संभव हो तो 108 पाठ प्रतिदिन 10 दिन करने से आपको उसका धन लाभ के आगमन होने के बहुत सारे अवसर दिखने लगेंगे और आप स्वयं अनुभव करेंगे कि पहले से ज़्यादा आपके जीवन में कितनी पॉजिटिविटी आती है इस अनुष्ठान से। तो ये आज का एक छोटा सा पॉडकास्ट है गणेश लक्ष्मी स्तोत्र और गणेश अथर्वशिष्य पर अपनी मनोकामना पूर्ति करने का। तो आशा करता हूँ इस पॉडकास्ट में आपको कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो गई होगी और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और गणपति भक्तों के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।